बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں بڑے ہی پیارے پروگرام میں جس کا نام ہے بقرعید کی, اور آج ہمارا پانچواں ایپیسوڈ ہے. کون سا ایپیسوڈ ہے؟ پانچواں ایپیسوڈ ہے, اور انشاءاللہ الکریم یہ سلسلہ کل تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس پروگرام میں آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں, خاص طور پر جانوروں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں. جانوروں کا ایک سما بندھا ہوا ہے, ہر طرف جانور ہی جانور نظر آ رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں بکرے کی رسی ہے تو کسی کے ہاتھ میں بیل کی رسی ہے, کوئی اونٹ سے ڈر رہا ہے تو کوئی بیل کی سینگ سے ڈر رہا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں پیارے بچوں کہ ہم نے جانوروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. ٹھیک ہے, جو جانور آپ کے ارد گرد سراؤنڈنگز میں ہیں, جو آپ قربانی کے لیے لے کر آئے ہیں, ان کے ساتھ کس طرح آپ نے پیش آنا ہے, ان سے بچ کے بھی رہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اپنے آپ کو آپ چوٹ لگا لیں اور پھر آپ کیا کریں گے, گھر پہ بیٹھ جائیں گے. کیا ہوگا پھر؟ گھر پہ بیٹھ جائیں گے. تو اچھے انداز میں ہم نے جانوروں کا خیال رکھنا ہے, ان کے کھانے پینے کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ نے اول تا آخر اس پروگرام کو دیکھنا ہے. انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آج بھی آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ہمارے ساتھ نعتخواں بھی ہیں, انشاءاللہ کلام بھی ہم سنیں گے, مبلغ بھی ہیں, انشاءاللہ بیان بھی ہم انشاءاللہ الکریم سنیں گے, اور بہت ساری ایکٹیویٹیز اور سیگمنٹس بھی ہم انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا, قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا, یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں, اور خصوصاً دیکھیں کتنا پیارا درود پاک, کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ جو ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملائیں گے. کیا کریں گے؟ اس سے ہاتھ ملائیں گے. تو ایک امتی کے لیے, ایک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کے لیے جو ان سے محبت کرتا ہے, اس کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ قیامت کے دن اس سے اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں گے؟ ہاتھ ملائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فضیلت پر عمل کریں اور کم از کم دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتے رہیں, اس کا معمول بنائیں گے. انشاءاللہ الکریم اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اب ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں کلام. تو پیارے بچوں ہمارے ساتھ الحمدللہ صفی اللہ بھائی موجود ہیں, آئیے ان سے ہم کلام سنتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی
بقرعید عید کی رونقیں,
خاتم رسل مکی مدنی, خاتم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی तक आदम से जनाबे ईसा तक सर
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में हमें सफीउल्लाह भाई ने कलाम सुनाया, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब जो है प्रोग्राम में हम बयान शामिल करते हैं। हमारे साथ इसहाक भाई मौजूद हैं, आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बयान करने जा रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बयान।
बकराईद की रौनकें, बकराईद की रौनकें।
प्यारे बच्चों, कुर्बानी के बहुत से दीनी और दुनियावी फायदे हैं, जैसा कि आप इस प्रोग्राम के जरिए इन फायदों को सुन रहे हैं। इसके साथ ही एक अहम फायदा कुर्बानी का ये भी है कि इसके जरिए गरीबों का भी भला हो जाता है। जैसा कि प्यारे बच्चों, इस्लाम हमें कुर्बानी के गोश्त के तीन हिस्से करने का दर्श देता है, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करने का हुक्म इरशाद फरमाता है। यानी वो गरीब लोग जो पूरे साल सही मानों में गोश्त खाने से महरूम रहते हैं, इस मुबारक त्योहार पर इनको भी अल्लाह पाक की इस नेमत से खूब फायदा उठाने का मौका मिलता है। प्यारे बच्चों, गोश्त एक ऐसी गिज़ा है जो इंसानी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है। गोश्त में आयरन, प्रोटीन वगैरह अहम चीजें होती हैं, जिसके जरिए इंसान सेहतमंद और हेल्दी हो जाता है। बकरा ईद के इस इस्लामी त्योहार पर ना सिर्फ मालदार बल्कि गरीब भी गोश्त के फायदे हासिल कर पाते हैं। मगर इसके साथ ही प्यारे बच्चों, हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि बहुत ज्यादा गोश्त खाना हमारी सेहत को नुकसान भी दे सकता है। तो बकरा ईद पर गोश्त जरूर खाएं, मगर बहुत ज्यादा खाने से खुद को बचाएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे साग भाई ने बड़े प्यारे अंदाज में हमें मकसद कुर्बानी के बारे में बताया। किस बारे में बताया? यानी देखें आप, कुर्बानी जब की जाती है तो जिसके घर में कुर्बानी होती है, जो कुर्बानी करता है, तो इस्लाम ये हुक्म देता है, इस्लाम ये दर्ज देता है, इस्लाम की टीचिंग ये है कि वो कुर्बानी के कितने हिस्से करे, एक हिस्सा अपने लिए। वाह भाई वाह, जबरदस्त। तो ये देखें कितनी प्यारी तालीमात है, कितनी प्यारी टीचिंग्स है इस्लाम की, कि एक हिस्सा अपने पास बंदा रख ले, एक हिस्सा रिश्तेदारों तक पहुंचाए, वो रिश्तेदार के जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई, खुसूसन बेसिकली उन रिश्तेदारों तक पहुंचाया जाता है कि जिनके घर पे कुर्बानी नहीं हुई होती, ताकि वो भी गोश्त खा सकें। और तीसरा हिस्सा किनका लिए, किनके लिए है? गरीबों के। यानी वो आम लोग के जो कुर्बानी नहीं करते या कुर्बानी नहीं कर पाते, तो उन तक भी ये गोश्त पहुंच जाए। और जो जितने मुसलमान हैं वो सब इस इस्लामिक त्यौहार को अच्छे अंदाज में मना सके, हर घर में क्या बने, गोश्त बने, हर घर वाला अच्छे अंदाज में ये जो बकर ईद है इसको अच्छे अंदाज में गुजार सके, इसके तीन चार दिन पाँच दिन ये जो होते हैं, तो ये क्या होता है कि सारे मुसलमान खुश होते हैं। क्या होते हैं? खुश होते हैं, अच्छे नजर आते हैं, मुस्कुराते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। तो ये एक बहुत प्यारा दर्स है इस्लाम का, और बहुत प्यारी तालीमात हैं, बहुत प्यारी टीचिंग्स हैं, हमें इसको भी अपने जहन में रखना चाहिए। इसी तरह जैसा कि इसहाक भाई ने फरमाया कि गोश्त खाना है लेकिन लिमिट से खाना। क्या करना है? लिमिट से खाना। हाँ, ऐसा नहीं गोश्त खाते रहे फिर वो आपको, फिर आप गोश्त को माजरत कर बैठे, माजरत भाई, गोश्त भाई माजरत, गोश्त भाई सॉरी, क्या बोलेंगे? गोश्त भाई, अब गोश्त अगर खाया तो हो सकता है बाद में ना खाएं, ना खा सकें। तो अब जो है फिर कि गोश्त ज़्यादा खाएंगे, कोई भी चीज़ बंदा ज़्यादा खाता है, लिमिट से ज़्यादा खाता है, तो फिर वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होता है, क्या होता है, फिर बंदा बीमार हो जाता है। ठीक है, बीमार हो जाते हैं, फिर कमज़ोरी आ जाती है, गोश्त नहीं खा पाते, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ को एतदाल में रहकर, लिमिट में रहकर खाएं। आइए बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं, एक और सेगमेंट शामिल करते हैं, और ये सेगमेंट भी बड़ा प्यारा सेगमेंट है जिसका नाम है टुडेज स्टोरी।
ईद की रौनकें।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट कौन सा शुरू हो चुका है? कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? तवज्जो के साथ सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? ठीक है, अब देखते हैं आपकी तवज्जो कितनी है। मेरे पास तो कहानी है, बहुत मजेदार है, वाकिया है, बहुत वीआईपी वाकिया है। कौन सा वाकिया है? वीआईपी। प्यारे बच्चों, वाकिया कुछ इस तरह है कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम, ये हैं अल्लाह पाक के नबी। कौन है अल्लाह पाक के
नबी?
हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम ने जुलहिज्जा की आठवीं रात को एक ख्वाब देखा। क्या देखा? और उसमें इन्होंने सुना कि कोई कहने वाला ये कह रहा है कि बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म देता है। कहां सुना इन्होंने? ख्वाब में। कहां सुन रहे हैं? एक ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में कोई कहने वाला ये कहता है कि बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म देते हैं। आप अलैहि सलातु वस्सलाम सुबह से शाम तक, यानी अगले दिन जब सुबह हुई आप उठे, तो सुबह से शाम तक इस बारे में सोचते रहे, बड़ा गौर फिक्र करते रहे कि आखिर ये क्या था, ये ख्वाब था कि क्या था जिसमें मुझे ये बताया गया और मुझे ये एक आवाज आई। तो प्यारे बच्चों, होता ये है अब कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम आठवीं रात को ख्वाब देखते हैं, ठीक है, अब पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है गौर फिक्र में। अब नवी रात को जब आप सोते हैं तो नवी रात को फिर दोबारा वही ख्वाब आता है। कौन सा ख्वाब आता है? जो आठवीं रात को था। अब आप अलैहि सलाम को सुबह होते ही यकीन हो जाता है, यकीन आप कर लेते हैं कि ये हुक्म जो है ये अल्लाह पाक की तरफ से है। किसकी तरफ से है? और वो हुक्म क्या था? वो हुक्म क्या था? अपने बेटे की कुर्बानी करने का ये हुक्म था। अब होता ये प्यारे बच्चों, अब नवा दिन भी यूं गुजर जाता है। दसवीं रात को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर दोबारा वही ख्वाब देखते हैं जो आठवीं को देखा और नवी रात को देखा। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही सुबह होती है उस ख्वाब पर अमल करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लेते हैं, अब होता यह है प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने प्यारे प्यारे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर चलते हैं तो इन्हें रोकने के लिए शैतान इनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में आता है। किसकी सूरत में आता है? यानी ऐसी शख्स, ऐसी सूरत में आता है कि वो शैतान ना लगे, वो जान पहचान वाले की सूरत में आता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। होता यह है कि शैतान पूछता है कि ए इब्राहिम, कहाँ का इरादा है? आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ का इरादा है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शैतान को जवाब देते हैं कि एक काम से जा रहा हूँ। अब वो शैतान कहता है कि क्या आप इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे? तो शैतान कहता है कि जी हाँ, आपको देख रहा हूं, क्या आप इसी काम के लिए जा रहे हैं? तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं उसकी फरमाबरदारी करूंगा, यानी अगर तो ये काम जो तुम समझ रहे हो अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है तो फिर तो मैं इसकी फरमाबरदारी करूंगा, मैं अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करूंगा। प्यारे बच्चों, होता यह है फिर शैतान जो है ना यहां से मायूस हो जाता है। शैतान को जब लगता है ना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी तरह रुक नहीं रहे और ये तो आगे जा ही जा रहे हैं और ये कुर्बानी करने के लिए पक्का इनका इरादा है, ये तो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं अल्लाह पाक की राह में, तो शैतान मायूस होकर वहां से चला जाता है। और अब जो ये शैतान है ये आता है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान के पास। इनके पास आता है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान और उनसे पूछता है कि इब्राहिम, आपके बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी अम्मी जान जिनका नाम है मुबारक है हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, क्या नाम है, आप फरमाती हैं कि वो अपने एक काम से गए हैं, अब शैतान कहता है कि नहीं नहीं, वो तो अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान करने के लिए गए हैं, कुर्बानी के लिए लेकर गए हैं। तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान करे? अब शैतान कहता है कि वो ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया है। तो इस पर हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अगर ऐसा है, अगर तो उन्हें अल्लाह पाक ने ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि तुम अपने बेटे को कुर्बान करो, तो उन्होंने अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? बहुत अच्छा काम किया। अब इसके बाद शैतान जो है जब उसको लगता है कि भाई यहां से भी बात नहीं बन रही, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी किसी तरह मान नहीं रही हैं। अब शैतान जो है ना वो आता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, किसके पास आता है, इनके पास आता है, और इन्हें भी इसी तरह बहकाता है, वही क्वेश्चन जो पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किए, फिर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किए, अब वही दोबारा क्वेश्चन जो है वो किनसे करता है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, लेकिन वो भी वही जवाब देते हैं जो पहले दो ने जवाब दिया, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी क्या करते हैं, वही जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब आप देखें प्यारे बच्चों के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, वो खुद कुर्बान होने जा रहे हैं, वो खुद कुर्बान होने जा रहे हैं अल्लाह पाक की राह में, और खुद क्या फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह पाक ने मेरे अब्बू जान को यह हुक्म इरशाद फरमाया तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये आप देखें अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने का कैसा जज्बा था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। अब प्यारे बच्चों होता क्या है, होता यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर एक खास मकाम पर पहुंचते हैं तो इन्हें अल्लाह पाक के हुक्म की खबर बताते हैं, यानी किनको बताते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अब देख लो तुम्हारी क्या राय है, यानी मशवरा करते हैं, पूछते हैं। तो प्यारे बच्चों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक और अपने वालिद की फरमा बरदारी करते हुए इतना प्यारा जवाब दिया, आपने फरमाया ए मेरे अब्बू जान आप वही करें जिसका आपको अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, जिसका आपको और इंशाअल्लाह मैं आप मुझे देखेंगे कि मैं सबर करने वालों में से हूंगा, आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे। अब होता यह है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए जमीन पर लिटाते हैं, इस पर लिटाते हैं, जब जमीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? मेंढा मींस दुम्बा, क्या होता है मेंढा, दुम्बा, यानी जन्नती दुम्बा लेकर आते हैं और दूर से ऊंची आवाज में फरमाते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या फरमाते हैं अल्लाह। अब ये आवाज जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुनते हैं तो अपना सर आसमान की तरफ उठाते हैं, किसकी तरफ उठाते हैं, आसमान की तरफ उठाते हैं, और ये इनको मालूम हो जाता है, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जान लेते हैं कि अल्लाह पाक की तरफ से जो आजमाई थी वो अब गुजर चुकी है, वो अब गुजर चुकी है और बेटे की जगह अब किसको कुर्बान किया जाएगा, दुम्बे को कुर्बान किया जाएगा, किसको कुर्बान किया जाएगा, दुम्बे को। तो लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश होकर जो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उनके जवाब में फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, क्या फरमाते हैं, और जब ये दो कलमात पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाए फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाए, अब जब ये दोनों कलिमात हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सुनते हैं तो आप फरमाते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, क्या फरमाते हैं प्यारे बच्चों। देखें आप इसके बाद से ही, यानी जब ये कलिमात इन तीनों हजरात ने फरमाए तो इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत कयामत तक के लिए जारी और सारी हो गई। बात समझ में आई आपको? अब हर साल ईद के मौके पर अय्याम तशरीक में इसे कहते हैं तकबीर तशरीक, क्या कहते हैं इसे, तकबीर तशरीक, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीर तशरीक अब हर साल पढ़ी जाती है अय्याम तशरीक में, जैसे ही नवी जुल्हिज्जा की फजर से लेकर तेरहवीं जुल्हिज्जा की असर की नमाज तक ये तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है, तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है। तो ये आप देखें कैसा प्यारा एक यूं समझें कि अमल है कि अल्लाह पाक ने इन तीनों हजरात की ये सुन्नत जो थी इसको हमेशा के लिए क्या कर दिया, जारी कर दिया। अब जो भी ईद मनाएगा और नमाज तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो अब वो उसने नमाज के बाद ईद के अय्याम में अय्याम तशरीक में ये तकबीर कहनी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब होता यह है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह फिर क्या होता है, दुम्बे को कुर्बान कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वाक्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो देखें आप कि अल्लाह पाक के दो प्यारे प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये कैसे प्यारे नबी हैं और कैसे प्यारे अल्लाह पाक के बंदे हैं कि इन्होंने अल्लाह पाक की तरफ से मिलने वाले हुक्म पर, यानी कि वो कहते हैं ना कि जरा सोचा नहीं, यूं नहीं किया कि यार इससे क्या होगा, ये हो जाएगा, अपने बेटे को कुर्बान करूंगा मैं। अच्छा, बेटे भी ये नहीं सोचते कि मैं कुर्बान होने जा रहा हूँ, नहीं, ये सोचते हैं कि अगर अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म मिला है तो बहुत अच्छा काम है, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म मिला है तो
बहुत अच्छा काम है।
तो हमें ये जहन बनाना चाहिए कि जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म इरशाद फरमाए हैं, जो अल्लाह पाक के अहकामात हैं, अल्लाह पाक ने हमें जो काम करने का कहा फरमाया है, वो काम हम करें। वो काम अब देखें, हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इसी तरह हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, ये तीन हजरात, ये तीन हस्तियां कैसी अल्लाह पाक की फरमा बरदार हस्तियां हैं कि इन्होंने ये देखा ही नहीं कि हम करने क्या जा रहे हैं, बस क्या देखा कि अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म मिला है। क्या देखा? अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म मिला है। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जो अल्लाह पाक की तरफ से हमें हुक्म मिला है वो हम करें। और वो क्या है? नमाज पढ़ना। वो क्या है? नमाज पढ़ना। हमें अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि भाई दिन में 5 वक्त नमाज पढ़नी है, दिन में 5 नमाजें आपने दिन में पढ़नी है। तो ये अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया। तो जो अल्लाह पाक का हुक्म है उस पर क्या करना है? हमने अमल करना है। तो नमाज हमने पढ़नी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, कोई यानी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कहे कि नमाज नहीं पढ़नी, नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। नमाज ये तो हुक्म है। तो अब हम गौर करें कि हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं और हम क्यों नमाज नहीं पढ़ते। हम तो उनके गुलाम हैं, वो हस्तियां कि जो अल्लाह पाक की तरफ से जब हुक्म मिलता तो ये देखते ही नहीं कि हुक्म क्या मिला है, ये देखते कि अल्लाह पाक की तरफ से मिला है। क्या देखते थे? अल्लाह पाक की तरफ से। तो हमें चाहिए कि हम इन हजरात को फॉलो करें, इन पर्सनैलिटीज को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, इनकी सीरत को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह इसमें हमें बरकतें भी मिलेंगी। और प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा हम नेक काम करें, और अगर मुश्किल आ भी जाए तो मुश्किल पर हमें क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें पता चलता है। आपने क्या किया? सब्र किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी आप देखें कैसा सब्र था ये कि अपने जबान से या अपने दिल में भी कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं। मुश्किल थी ना ये, एक तरह से मुश्किल थी। तो हम पर भी अगर मुश्किल आए तो हमें चिल्लाना नहीं चाहिए, जोर से चीखना नहीं चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, सबको बताना नहीं चाहिए, ठीक है? सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब्र। अल्लाह पाक चाहेगा तो इंशाल्लाह हमारे हक में जो बेहतर होगा वही होगा, और अल्लाह पाक हमसे मुश्किलात को क्या फरमाएगा? दूर फरमा देगा। तो ये हमें आज के इस टुडेज स्टोरी के टॉपिक में सीखने को मिलता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब वक्त हुआ है प्यारे बच्चों एक कलाम शामिल करने का। इंशाल्लाह हमारे साथ नातखा हैं और प्रोग्राम में कलाम शामिल करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह एक्टिविटीज की तरफ बढ़ेंगे। जी,
ईद की रौनक ईद की रौनक
सल्लल्लाहु अलैका या رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو ہو چکا Oh, سے کیسے نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں خدا کو دے جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا
حضور جانتے
ہیں جینا میں کو حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں
نہیں ہے زاد سفر
حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا جا حضور جانتے ہیں
سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نیکی کی دعوت
بکرا عید عید کی رونقیں بکرا عید عید کی
اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس کی مدد سے مجھے نیکی کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق ملتی ہے
اشارہ
سواری کی دعا السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاشر بھائی کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. یہ بتائیں آپ چل رہے ہیں ہمارے ساتھ؟
کہاں جا رہے ہیں آپ؟
ہم لوگ منڈی جا رہے ہیں قربانی کا جانور لینے.
ٹھیک ہے حاشر بھائی, ابھی میں اپنے ابو جان سے پوچھ کر آتا ہوں.
ٹھیک ہے, میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں.
جی ٹھیک ہے.
بقر عید ہے, بقر عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں.
کیا ابا؟
یار ابھی تک آئے نہیں ہے.
سنو آگے کیا ہو.
بابا فضیل بھائی بھی آ رہے ہیں, ایک منٹ رکے گا.
جی ٹھیک ہے بیٹا.
پیارے پیارے
شکر ہے فضیل بھائی آپ آ گئے, چلے بیٹھے.
اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سواری کی دعا پڑھ لیتے ہیں.
فضیل بھائی مجھے تو سواری کی دعا نہیں آتی.
چلے کوئی بات نہیں, میرے ساتھ مل کر دہرائیے. سبحان الذی
سبحان الذی
سخر لنا
سخر لنا
ھذا
ھذا
وما کنا
وما کنا
لہ مقرنین
لہ مقرنین
وانا
وانا
ربنا لمنقلبون.
بقر عید ہے, بقر عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں.
کیا بات ہے,
کہانی سنو آگے کیا ہوگا.
پیارے بچوں آپ نے نیکی کی دعوت سیگمنٹ دیکھا, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور آخری سیگمنٹ شامل کریں گے اور وہ ایکٹیویٹی ہے, اور اس ایکٹیویٹی کا نام ہے جواب بتائیں جواب بتائیں نمبر کمائیں.
بقر عید کی رونقیں, بقر عید کی رونقیں.
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا ایکٹیویٹی کا, اور یہ ہے جواب بتائیں اور نمبر کمائیں. آپ جواب بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نمبر ملیں گے. اس میں ہے یہ کہ آپ دیکھیں تین باکس ہیں. کیا ہے پہلا باکس؟ کیا ہے اب اس میں ہے کوشچنز. ٹیم اے سے تین سوال اور ٹیم بی سے تین سوال. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو کوشچنز ہے ٹھیک ہے وہ ہیں 10-10 پوائنٹس کے. کتنے پوائنٹس کے ہیں؟
10-10.
اور اس میں جو ہے وہ ہے 20, اور اس میں جو ہے وہ ہے 10. ٹھیک ہے, تو آپ ایک ٹیم سے, ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے دونوں سے, ایک سوال اس میں سے ہوگا, ایک سوال اس میں سے ہوگا, اور ایک سوال اس میں سے ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تینوں جواب آپ نے کیا کرنے ہیں؟ درست دینے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے بڑھتے ہیں پہلے کوشچن کی طرف, اور ٹیم اے سے انشاءاللہ ہم کوشچن کریں گے. سارے ہی نکال لیتے ہیں اور پھر ایک ساتھ دونوں ٹیموں سے ہم کر لیں گے. جی پہلا کوشچن ٹیم اے سے, آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے, لیکن پہلے ہاتھ کھڑا کریں گے, پھر اس سے ہم پوچھیں گے. غلطی کریں گے, اگر غلط جواب دیا تو آپ کو پوائنٹس نہیں ملیں گے. چلیں سوال یہ ہے آپ سے, یہ بتائیں ٹیم اے کہ وہ کون سا مبارک غار ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. ایک منٹ, آپ بتائیں گے؟ پہلے مشورہ کر لیں, ایک دوسرے سے پوچھ لیں. آپ بتائیں, انہیں مائک دیں, انہیں مائک دیں. جی
غار حرا.
عثمان بھائی نے جواب دیا ہے غار حرا, اور عثمان بھائی کا جواب بالکل درست ہے. جی ہاں ماشاءاللہ, تشریف رکھیں. سب سے پہلی وحی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی. ٹیم بی کی طرف آتے ہیں, اور ٹیم بی سے ہم سوال کرتے ہیں. ٹیم بی سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں جنتی پتھر حجر اسود, جنتی پتھر حجر اسود یہ کہاں لگا ہوا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. غلطی کریں گے تو آپ کو پھر غلط ہو جائے گا, پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا. جی بتائیں.
خانہ کعبہ کے کونے میں.
خانہ کعبہ کے کونے میں, نہیں خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے. جواب درست دے دیا ہے.
سبحان اللہ,
تو اس کا مطلب ہے کہ 10 پوائنٹس ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے گئے. اب بڑھتے ہیں ہم حج باکس کی طرف. کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اور دیکھتے ہیں کہ حج باکس میں آپ کے لیے کیا ہے. چلیں ٹیم اے کی طرف, یہ ہے 20 پوائنٹس کا کوشچن. یہ اگر آپ جواب غلط دیتے ہیں تو آپ کو 20 پوائنٹس نہیں ملیں گے, آپ پیچھے رہ سکتے ہیں. چلیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ تھوڑا مشکل کوشچن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے. چلیں پیارے بچوں, آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کون سا میدان ہے وہ جہاں حج کرنے والے ٹھہرتے ہیں, جہاں حج کرنے والے ٹھہرتے ہیں وہ میدان ہے, اور وہ عین سے شروع ہوتا ہے. بتائیں, مشورہ کر لیں. آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے آپ کو؟ نہیں آتا, وہ تو خود کنفیوز ہیں. 10 9 بتائیں. ایک منٹ جی.
عرفات.
کنفرم ہے؟ میدان عرفات. کیا کرتے ہیں میدان عرفات میں؟
حاجی ٹھہرتے ہیں
میدان عرفات میں. جواب درست دے دیا ہے,
سبحان اللہ,
زبردست بھائی, ماشاء اللہ زبردست. چلے بھائی, اب ہے ٹیم بی سے سوال. یہ بتائیں کہ آپ بھی 20 پوائنٹ لینا چاہتے ہیں؟ اچھا, تو جواب بتائیں. یہ بتائیں, مالدار شخص پر زندگی میں کتنی بار حج فرض ہے؟ ایک بار, دو بار یا تین بار؟
چلیں ایک بار.
ایک بار کنفرم ہے آپ کو؟ دیکھ لیں, غلطی نہ ہو جائے. صحیح کہہ رہے ہیں یہ. مالدار شخص پر آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بھی 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں, یعنی آپ کا جواب درست ہو چکا ہے.
سبحان اللہ,
ماشاء اللہ, زبردست, دونوں جواب درست ہو گئے. اب ہے آخری سوال دونوں سے, ٹھیک ہے؟ چلیں بھائی, اب ہے لاسٹ, ایک ایک سوال آپ دونوں سے. ٹیم میں سے پہلا سوال کرتے ہیں, یہ بتائیں اونٹ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہو گیا تھوڑا مشکل. اب بتائیں آپ, اونٹ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اونٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اونٹ کہتے ہیں. کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 چلے بھائی, نہیں بتا پائے. اونٹ کو عربی زبان میں کہتے ہیں جمل. کیا کہتے ہیں؟
جمل.
اس کا مطلب ہے آپ کو 10 پوائنٹ نہیں ملیں گے. اب آپ سے سوال ہے, اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو بھی ملتے ہیں 10 پوائنٹ یا نہیں ملتے ہیں. پیارے بچوں یہ بتائیں, ان سے سوال ہوا کہ اونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اونٹ کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تھوڑا مشکل ہے یہ. اونٹ کے اندر کتنے حصے؟ ایک منٹ, اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ مشورہ کر لیں پہلے, کنفرم ہو تو بتائیے گا. جی کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. ہاں انہیں دے دو, انہیں دے دو.
سات.
کنفرم؟
کنفرم.
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 بھائی کنفرم کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ غلطی ہو گئی نا ان سے؟ غلطی ہو گئی نا ان سے؟ نہیں ہوئی غلطی. کیا جواب درست ہے؟ کتنے حصے ہوتے ہیں اونٹ میں؟ سات ہوتے ہیں. آپ کے ٹیم والے غلط بتا رہے ہیں آپ کو جان بوجھ کے. پتا ہے آپ کو؟ آپ کو جان بوجھ کے غلط بتا رہے ہیں. کیا 10 بول رہے ہیں نا یہ؟
نہیں سات.
سات. ہاں کیا, کتنے ہوتے ہیں؟
سات
ہوتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟
محمد حسن.
حسن بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے,
سبحان اللہ,
ماشاء اللہ. چلے بھائی, اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ آج ہمیں پتا چلا. دیکھیں بیل کے اندر اور اونٹ کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں؟
سات.
اسی طرح بھینس کے اندر بھی کتنے حصے ہوتے ہیں؟
سات.
بکرے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اور کیا رہ گیا؟ دمبے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ بکری میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟
دو.
میں اشارہ کر رہا ہوں تو آپ غلط بتائیں گے. نہیں نہیں بکری میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ چلے اچھا, آپ ایک اور, اب کیا رہ گیا؟ کچھ تو رہ گیا آپ. نہیں نہیں کچھ تو رہ گیا. ہاں یہ بتائیں, بیل کے بچے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو. ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے. آپ کیا کہتے ہیں؟
ایک.
اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دو. اور دو دو. ایک منٹ ساگ بھائی جی, ساگ بھائی کیوں نہیں ہوگی قربانی؟ نہیں تو جو بیل ہے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے نا, وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے نا.
اگر اس کی 2 سال سے عمر کم ہوگی تو نہیں ہوگا.
ہاں اس کی 2 سال, بھائی 2 سال سے زیادہ ہے
بچہ, بول لو
2 سال سے زیادہ عمر ہے. چلیں آپ یہ بتائیں, 2 سال سے زیادہ عمر ہے لیکن मेरी बात तो सुने, पूरी बात सुने। अभी आप देखें गलत बयानी नहीं, अभी आप सब क्या करते हैं, एक दो, अब ये सात नहीं है, दो साल से ज्यादा उम्र है भाई, उसकी कुर्बानी हो सकती है, लेकिन वो बेल का बच्चा है। वो क्या है? बात सुना रही है इसहाक भाई, वो बेल का बच्चा है। अब आप ये बताएं कि उसके अंदर कितने हिस्से होंगे? कितने होंगे? और आप क्या कह रहे थे? तीन भी तो कहा था किसी ने, तीन। आप क्या कह रहे थे? तीन। तो ये देखें आप, अब आप बता दें आखिर में कितने हिस्से होंगे, नहीं पता आपको? तो प्यारे बच्चों, बैल का बच्चा हो, कुछ भी हो, जिसकी कुर्बानी हो सकती है, अगर वो बैल भैंस की नस्ल से है तो उसमें सात ही हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर बकरे की नस्ल है, क्या है? अब बकरा भी तो बच्चा है ना किसी का तो बच्चा था बकरा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। हाँ, छोटे बकरे की कुर्बानी नहीं हो सकती, मतलब एक साल से अगर कम उम्र बकरा है तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। बकरे के लिए एक साल की उम्र का होना जरूरी है, और बैल के लिए, ठीक है, ये याद रखना आप। तो अगर वो एक साल से छोटा है तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वो एक साल से बड़ा है और उसके भी अब्बू है तो वो भी बच्चा है। बकरा क्या है? बच्चा है, तो उसकी कुर्बानी हो सकती है, वो एक साल से बड़ा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसका मतलब है कि हमारी टीम ए के एक सवाल, एक गलती हो गई थी ना आपसे, तो आपके 10 पॉइंट कम, यानी 30 पॉइंट है, और आपके कितने हो गए हैं? तो टीम बी आगे निकल गई है। कहाँ निकल गई है? आगे निकल गई है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। कल इंशाअल्लाह करीम फिर आप इसी वक्त में हमारा प्रोग्राम देखेंगे। आपने तवज्जो के साथ कल भी इसी तरह देखना है, दूसरों को दावत भी दें, शेयर करें, और कल भी आपने गैर हाजिर नहीं होना, प्रेजेंट रहना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। बकरा ईद।